नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति के मद्देनजर पेट्रोलियम, कच्चे तेल, गैस, बिजली और उर्वरक क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा के लिए आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने फिर कहा कि देश भर में आवश्यक ईंधन की कोई कमी नहीं, पीएनजी कनेक्शनों के विस्तार पर बल दिया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विश्व नेताओं से ईरान का सामना करने में इसराइल और अमेरिका का साथ देने का आग्रह किया। ईरान ने कहा नतांज परमाणु संयंत्र पर हमले के जवाब में दक्षिणी इसराइल पर मिसाइल हमले किए गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने दावा किया कि 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। इससे स्वास्थ्य में सुधार, जीवन स्तर में वृद्धि और महिलाओं के सम्मान में वृद्धि हुई है। असम, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की कल अंतिम तिथि। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पाकिस्तान शीर्ष पर, मौतों में 6% की वृद्धि दर्ज हुई। और स्क्वाश में मौजूदा चैंपियन अनाहत सिंह ने मुंबई में इंडियन ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति के मद्देनजर पेट्रोलियम, कच्चे तेल, गैस, बिजली और उर्वरक क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा के लिए आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य निर्बाध आपूर्ति, स्थिर रसद और देश भर में कुशल वितरण सुनिश्चित करना था। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर सहित कई केंद्रीय मंत्री और अधिकारी उपस्थित रहे। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश भर में आवश्यक ईंधन की कोई कमी नहीं है, तेल शोधन संयंत्र पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त भंडार है। खुदरा दुकानों पर भी किसी प्रकार की कमी की सूचना नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
सरकार ने देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की स्थिर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी सामान्य रूप से जारी है और घबराहट में की जाने वाली बुकिंग कम हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों को कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति बढ़ाई गई है। इसमें स्कूलों और अस्पतालों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। मंत्रालय ने बताया कि एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए देश भर में छापेमारी की जा रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि वो समुद्री व्यापार को जारी रखने के लिए जहाजों की आवाजाही, बंदरगाह संचालन और भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर नजर रख रहा है। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 547 से अधिक भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विश्व नेताओं से ईरान का सामना करने में इसराइल और अमेरिका का साथ देने का आग्रह किया है। उन्होंने आज कहा कि ईरान के हाल के मिसाइल हमलों से पता चलता है कि ईरान विश्व के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कल दक्षिणी इसराइल के अराद और दिमोना में ईरान के मिसाइल हमले के बाद ये टिप्पणी की है। इन हमलों में 100 से अधिक लोग घायल हुए और रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा। इसराइल के प्रधानमंत्री ने आज अराद में हमले की जगह का दौरा किया। बाद में श्री नेतन्याहू ने ईरान पर यरूशलेम में नागरिक क्षेत्रों और स्थलों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईरान ने लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तथा ऊर्जा मार्गों को खतरा पैदा हो गया है। ईरान ने कहा है कि ये हमले उसके नतांज परमाणु संयंत्र पर हुए हमले के जवाब में रणनीतिक स्थलों को निशाना बनाकर किए गए थे। दूसरी ओर इसराइली रक्षा बलों ने कहा है कि उन्होंने दक्षिणी लेबनान में ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए नए हमले किए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दो क्षेत्रों में इसराइली हमलों के बाद 4 लोग मारे गए और 7 अन्य घायल हो गए। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी कहा कि उन्होंने आज सुबह मिसाइल हमलों को नाकाम किया। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसने आज ईरान से दागी गई 4 बैलिस्टिक मिसाइलों और 25 ड्रोन को नाकाम कर दिया। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि आज दोपहर ईरान से दागी गई 4 बैलिस्टिक मिसाइलों और 25 ड्रोन को उसकी हवाई रक्षा प्रणाली ने रोक दिया। कई शहरी इलाकों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। एक अलग घटना में ब्रिटेन के समुद्री व्यापार संचालन केंद्र ने शारजाह तट से लगभग लगभग 15 समुद्री मील दूर एक मालवाहक पोत के पास एक मिसाइल के विस्फोट की सूचना दी। उधर लेबनान में इसराइली सेना ने हवाई और जमीनी अभियान तेज कर दिया है। सेना ने लितानी नदी पर बने पुलों पर हमले की पुष्टि की है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर खियाम के आसपास लड़ाई तेज हो गई है, जबकि संघर्ष शुरू होने के बाद से लेबनान में मरने वालों की कुल संख्या अब 1,000 से अधिक हो गई है। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ड्स ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ईरान समर्थित गुटों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज जल डमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए पूरी तरह से नहीं खोला गया तो अमरीका ईरान के बिजली संयंत्रों को नष्ट करने के लिए तैयार है। एक रिपोर्ट।
ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 74वें चरण की घोषणा की है। इस चरण में शक्तिशाली मिसाइल के इस्तेमाल और इसराइल में सैन्य तथा सुरक्षा ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। ईरानी संसद के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर चेतावनी में कहा कि अगर उसके बिजली संयंत्रों पर हमला होता है तो पूरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, ऊर्जा केंद्रों और तेल सुविधाओं को निशाना बनाया जाएगा। इस बीच ब्रिटेन में ईरान के राजदूत और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में स्थायी प्रतिनिधि ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के दुश्मनों को छोड़कर सभी देशों के लिए खुला रहेगा और ईरान के साथ आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के बाद जहाजों की सुरक्षित आवाजाही हो सकेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में किसी निर्वाचित सरकार का सबसे अधिक समय तक नेतृत्व करने वाले शासनाध्यक्ष बन गए हैं। श्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर संयुक्त रूप से 8,931 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। उनसे पहले पवन कुमार चामलिंग 8,930 दिन तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में सबसे अधिक समय तक निर्वाचित सरकार का प्रमुख रहने पर बधाई दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से जल के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य में सुधार, जीवन स्तर और महिलाओं के सम्मान में वृद्धि हुई है। श्री पाटिल जल महोत्सव 2026 के समापन समारोह के अंतर्गत आयोजित सुजल ग्राम संवाद में 5 राज्यों के प्रतिभागियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल महोत्सव एक राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन में परिवर्तित हो चुका है। असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया कल शाम समाप्त हो जाएगी। इन दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मतदान अगले महीने की 9 तारीख को एक ही चरण में कराया जाएगा। एक रिपोर्ट।
नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार को होगी और उम्मीदवार 26 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। तमिलनाडु विधानसभा के लिए मतदान एक ही चरण में 23 अप्रैल को होगा। पश्चिम बंगाल में मतदान 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को कराया जाएगा। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना इस महीने की 30 तारीख को जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान की अधिसूचना 2 अप्रैल को जारी होगी। सभी 4 राज्य और केंद्र शासित देश पुदुचेरी के मतों की गिनती 4 मई को होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
कांग्रेस ने असम में विधानसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की घोषणा की है। जोसेफ हासदा को गोसाईगांव विधानसभा क्षेत्र से, नारायण अधिकारी को माजबत से, अंचुला ग्वारा डाइमरी को भेरगांव से और निर्मल लंगथासा को हाफलोंग से उम्मीदवार बनाया गया है। असम विधानसभा की 126 सीटों के लिए 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 4 मई को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने केरलम में विधानसभा चुनाव के लिए एक और उम्मीदवार की सूची जारी की है। एडवोकेट एस स्मिता को वर्कला विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। केरलम की 140 सदस्यों की विधानसभा के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा और मतगणना 4 मई को होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पहली बार शीर्ष स्थान पर आ गया है। पाकिस्तान में पिछले वर्ष आतंकवाद से जुड़ी मौतों में 6% की वृद्धि दर्ज हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 के अनुसार पाकिस्तान में आतंकवाद से होने वाली मौतें 2013 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर हैं। वर्ष 2025 में देश में 1,139 आतंकवादी मौतें और 1,045 घटनाएं दर्ज की गई, जो बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को दर्शाती हैं। पाकिस्तान में आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान प्रांत बने हुए हैं। पिछले वर्ष देश में हुए कुल आतंकी हमलों में से 74% से अधिक और कुल मौतों में से 67% मौतें इन्हीं दो प्रांतों में दर्ज की गई। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जेलों की स्थिति से संबंधित ताजा आंकड़े 18 मई तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसमें कैदियों की स्वीकृत क्षमता और भीड़भाड़ से निपटने के लिए उठाए गए कदम शामिल हैं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने हाल में एक आदेश में महिला जेलों की संख्या और उपलब्ध सुविधाओं का विवरण भी मांगा है, जिसमें महिला कैदियों के साथ रहने वाले बच्चों की शिक्षा और कल्याण के उपाय भी शामिल हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भविष्य की सतत जल आपूर्ति सुनिश्चित करने में जल संरक्षण के महत्व पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब खेल खबरें। मुंबई में अनाहत सिंह और अभय सिंह ने इंडियन ओपन स्क्वाश का खिताब जीत लिया है। पुरुष वर्ग में अभय सिंह ने वीर चोटरानी को 3-0 से हराया। वीर चोटरानी ने संजय जीवा को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। वहीं महिला वर्ग में अनाहत सिंह ने हाना मोहताज को 3-1 से मात दी। सेमीफाइनल में अनाहत ने तन्वी खन्ना को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तराखंड में बिजली गिरने तथा तेज हवाओं के साथ तूफान की आशंका व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, रायलसीमा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, कोंकण और गोवा में कल गर्म और उमस भरे माहौल मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति के मद्देनजर पेट्रोलियम, कच्चे तेल, गैस, बिजली और उर्वरक क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने फिर कहा, देश भर में आवश्यक ईंधन की कोई कमी नहीं, पीएनजी कनेक्शनों के विस्तार पर बल दिया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विश्व नेताओं से ईरान का सामना करने में इसराइल और अमरीका का साथ देने का आग्रह किया। ईरान ने कहा, नतांज परमाणु संयंत्र पर हमले के जवाब में दक्षिणी इसराइल पर मिसाइल हमले किए गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने दावा किया कि 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। इससे स्वास्थ्य में सुधार, जीवन स्तर में वृद्धि और महिलाओं के सम्मान में वृद्धि हुई। असम, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की कल अंतिम तिथि। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पाकिस्तान शीर्ष पर, मौतों में 6% की वृद्धि दर्ज हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।